नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज का एपिसोड समर्पित है ओशो के संबोधि दिवस 21 मार्च को। शुरुआत करते हैं एक संन्यास सॉन्ग के साथ, जिसे रिकॉर्ड किया गया है 1987 में। वर्ड्स आर, भगवान योर लव is an invitation to live a life of celebration. On the wings of love, with you we fly.
Thank you.
आज के एपिसोड का डिस्कोर्स पिया कुखोजन में चली नंबर 5 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें छोटे बच्चों के प्रतिभावान होने के प्रति जगा रहे हैं।
दूसरा प्रश्न, भगवान आप कहते हैं कि ध्यान पुनः जन्म है और व्यक्ति छोटे बच्चों की भांति प्रतिभावान हो जाता है, क्या छोटे छोटे बच्चे सच ही इतने प्रतिभा संपन्न होते? योगेश, निश्चय ही प्रत्येक बच्चा ताजा पैदा होता है, उसका दर्पण निर्मल होता है, न विचारों की कोई भीड़भाड़ होती है उसके भीतर, न आकांक्षाओं का कोई जाल होता उसके भीतर, न अहंकार की अकड़ होती उसके भीतर। अभी उसके भीतर कुछ भी नहीं होता, अभी कोई उपद्रव खड़ा नहीं हुआ है। उपद्रव खड़े होंगे, अभी हम शिक्षा देंगे उसको, उपद्रव खड़े करेंगे। न तो अभी वो हिंदू है, न मुसलमान है, न अभी उसे मस्जिद से लेना है कुछ, न मंदिर से लेना है कुछ। अभी तो हम उसे संसार की शिक्षा देंगे, अभी उसे अगर हम कहें भी कि तू राष्ट्रपति बन जा, तो वो कहेगा क्यों, मैं क्यों बनूं राष्ट्रपति? अभी वो अपने में मस्त है, अभी तितलियों के पीछे दौड़ने में ऐसा मजा है। अभी तो समुद्र तट पर सीपियां बिन लेने में इतना आनंद है कि अगर हम उसको कहें भी धन कमा तो वो हंसेगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि धन किस लिए, कि पद किस लिए। लेकिन 20 साल 25 साल हमारी शिक्षण की प्रक्रिया से गुजरकर और 25 साल तुम सोचते हो कितना समय होता, तुम्हारे जीवन का एक तिहाई हिस्सा और सबसे बहुमूल्य हिस्सा, क्योंकि फिर इतने ताजे भी तुम कभी नहीं होगे, इतने जिंदा भी कभी नहीं होगे। 25 वर्ष की शिक्षाओं के बाद हम प्रत्येक बच्चे को विषाक्त कर देते, उसको महत्वाकांक्षाओं से भर देते, उसे राजनीति से भर देते, कूटनीति से भर देते, तरह तरह के झूठों से भर देते। इसी सब में उसकी प्रतिभा दब जाती, उसके दर्पण पर इतनी परतें जम जाती धूल की कि दर्पण खो ही जाता है, फिर दर्पण में प्रतिबिंब बनता ही नहीं। नहीं तो प्रत्येक बच्चा प्रतिभा के साथ पैदा होता है। इसे तुमने अनुभव भी किया होगा कि प्रत्येक बच्चा सुंदर मालूम होता है, उसकी आंखों में एक दमक मालूम होती, उसके चेहरे पे एक चमक मालूम होती। धीरे धीरे दमक खो जाती है, चमक खो जाती, सौंदर्य भी खो जाता है। कहां चला जाता है सारा सौंदर्य? हम छीन लेते हैं। हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था अब तक की अमानवीय है। दुनिया एक बिल्कुल ही नई शिक्षा के लिए आतुर, एक नई मनुष्यता के लिए, एक नए मनुष्य के लिए तैयारी करनी, क्योंकि पुराना मनुष्य काम नहीं आया और जो हमने मनुष्य बनाया था उसमें कहीं कुछ बुनियादी चुका हो गई। वो ठीक था युद्ध के लिए, हत्या करने के लिए, मरने मारने के लिए, लेकिन जीने की कला उसे नहीं आती थी। हमने सिखाया ही उसे यही था, छीना झपटी, मारपीट, कले, ईर्षा, जलन, महत्वाकांक्षा, अहंकार। हमने उसे कोई प्रेम की शिक्षा तो दी नहीं, हमने उसे कोई प्रतिभा की शिक्षा तो दी नहीं। हमने ये तो नहीं किया कि उसकी प्रतिभा पर और धार रखते। तुम जरा छोटे बच्चों की बातें सुनो योगेश, और तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। बाप ने बेटे को डांटा, कहा मैं जब बच्चा था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। बेटे ने अपने बाप की तरफ देखा और पूछा, फिर आपने झूठ बोलना कब से शुरू किया पिताजी? जब बच्चे थे तब झूठ नहीं बोलते थे, फिर कभी तो शुरू किया हो, कब से शुरू किया? उसकी आंख साफ देख रही कि ये बात भी झूठ, ये बात भी सरासर झूठ। ये बाप का कहना है कि मैं जब बच्चा था तो कभी झूठ नहीं बोलता था, ये भी झूठ। एक महिला ने अपने बच्चे को डबल रोटी पर मक्खन लगा कर दिया, उसे खाते खाते बच्चा रोता रहा। मां ने पूछा, रोते क्यों हो? मैंने तो तुम्हें काफी बड़ा टुकड़ा दिया है, इसलिए तो मैं रो रहा हूं क्योंकि ये लगातार छोटा होता जा रहा है। यही तो स्थिति जिंदगी की है। लेकिन कितने लोगों को होश है, कितने लोगों के पास प्रतिभा है जो ये देख सके कि हम रोज मर रहे, कि जन्म के बाद सिवाय मरने के हम और कुछ भी नहीं कर रहे, कि जिस दिन हम जन्मे हैं उस दिन से मरना शुरू हो गया, कि रोटी का टुकड़ा रोज छोटा होता जा रहा है, कि मौत रोज करीब आती जा रही, और हमने क्या तैयारी की है मौत के स्वागत की? मेहमान द्वार पर आने को है, हमने उसके स्वागत का क्या आयोजन किया है? मौत आएगी, तो तुम्हें बिल्कुल ही गैर तैयार पाएगी। तुम आलिंगन कर सकोगे मौत, तुम सहनाई बजा सकोगे, तुम कह सकोगे कि आओ स्वागत है, कि कपोगे, कि डरोगे, कि रोओगे, कि घबराओगे, कि चीख पुकार मचाओगे, कि और थोड़ी देर जी लेने तो। जो आदमी मौत को सामने देखकर कहता और थोड़ी देर जी लेने दो, वो आदमी जिया ही नहीं। अगर वो जिया होता तो वो मरने को भी राजी होता, क्योंकि मरना जिसने जिया है उसके लिए जीवन का शिखर, जीवन की आत्यंतिक ऊंचाई गौरी शंकर। लेकिन जो जिया ही नहीं उसके लिए मरना तो ऐसा लगता है कि बात ही खत्म हो जा रही, और हम तो जिए भी नहीं, तो जीवन यूं ही निकल गया, बिना जिए निकल गया, कारवा निकल गया, गुबार उड़ती रह गई, अब सिर्फ धूल ही धूल हाथ में मालूम पड़ती। तो रोए ना तो क्या करे, अलेक्जेंडर भी रोता हुआ मरता है। सिर्फ कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति ही हंसते हुए विदा होता है आनंद पूर्वक। जीवन ने बहुत दिया, जीवन को धन्यवाद देता हुआ अनुग्रह से विदा होता है। एक अध्यापक एक छोटे से बच्चे से बार बार पूछ रहे थे, बता पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी थी। जब बहुत बार पूछने पर भी लड़का कुछ नहीं बोला तो अध्यापक ने थप्पड़ जड़ दिया। लड़का रोता हुआ बोला, मास्टर जी मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं लड़ी थी। अब पानीपत की लड़ाई, सच तो यही मूढ़तापूर्ण बात है कि हम बच्चों को सिखाएं कि किसने लड़ी थी। ये मूढ़तापूर्ण बात है कि हम बच्चों को सिखाएं नादिर शाह के संबंध में और तैमूर लंग के संबंध में और चंगेज खान के संबंध में और औरंगजेब के संबंध में। ये पागलपन की बात है कि हम बच्चों को कहें कि तुम अतीत को घोटो। ये निपट मूलतापूर्ण बात है। उनको जीना है भविष्य में और सिखाते हैं हम उनको अतीत। ये यूं हुआ जैसे कोई बहुत पागल आदमी, मूढ़ आदमी कार बनाए और जहां ड्राइवर बैठता है वहां दर्पण भर लगा दे जिसमें पीछे का रास्ता दिखाई पड़े, जहां कांच होता है जिसमें से वो आगे का रास्ता देखता है वहां दर्पण लगा हो, पूरा बड़ा दर्पण कि पीछे का रास्ता दिखाई पड़े जहां से कार गुजर चुकी, और जहां जा रही है कार वहां का कुछ भी दिखाई ना पड़े, तो क्या गति होगी? गति होगी या दुर्गति होगी? ये कार गिरने ही वाली है किसी गड्ढे में, ये उतरेगी ही गड्ढे में, क्योंकि दिखाई वो रास्ता पड़ रहा है जिस पर अब चलना नहीं, जिससे हम चल चुके हैं, और वह रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस पर चलना है। ये भी पता नहीं कि रास्ते की तरफ जा रहे हैं कि दीवार की तरफ जा रहे हैं कि खड्ड की तरफ जा रहे हैं। सच्ची शिक्षा वर्तमान में जीना सिखाएगी और इतनी मेधा देगी कि हम भविष्य की तरफ देखने में समर्थ हो सके। लेकिन अभी हमारी सारी शिक्षा अतीत उन्मुख है, मगर हम बड़े बहानों से उसकी शिक्षा देते, बड़ी तरकीबों से उसकी शिक्षा देते, और ऐसे सुंदर बहाने हम खोज लेते हैं कि लगता है कि शिक्षा देने जैसी है। सारी दुनिया में ये चलता है। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा, मेरी हमेशा झंझट रही अध्यापकों से, इस बात की झंझट रही कि मुझे लेना देना क्या है कि पानीपत की लड़ाई कहां हुई, क्यों हुई। सच तो ये होनी नहीं थी, हुई ही क्यों। मेरे अध्यापक कहते कि ये भी याद दोगे तुमसे, हम ये पूछ ही नहीं रहे कि हुई है क्यों या होनी नहीं थी कि होनी थी, हम पूछ रहे हैं कहां हुई, किन के बीच हुई। मैं कहता हूं मुझे लेना देना क्या है, मुझे लड़ना नहीं, मैं पानीपत की लड़ाई के संबंध में क्यों समय खराब करूं। कुछ मूड लड़े, कुछ मूड पढ़ा रहे हैं वो जो लड़े उसको, और कुछ मूड उसको याद करें। प्रयोजन क्या है, लेना देना क्या है। अगर अतीत के संबंध में भी कुछ बहुमूल्य कहना हो तो बुद्ध के संबंध में कुछ कहो, महावीर के संबंध में कुछ कहो, कृष्ण के संबंध में कुछ कहो, क्राइस्ट के संबंध में कहो, इनके बाबत तो कोई खास चर्चा नहीं होती। इतिहास में ये तो पाद टिप्पणियों में भी नहीं आते, इतिहास में तो गधों की चर्चा होती, निपट गधों की, जिनको हमें बिल्कुल ही भुला देना चाहिए, जो होने ही नहीं थे पहली तो बात, और अगर हो गए तो अब उनको क्यों घसीटते हो। अब क्या उनकी याद करने की जरूरत है कि किस सन में कौन सा राजा इंग्लैंड में राज्य करता था, क्या प्रयोजन। ये बच्चा ठीक कह रहा है कि पानीपत की लड़ाई मैंने नहीं लड़ी थी, एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी परमात्मा ने यह आकाश क्यों बनाया, आकाश की जगह छप्पर क्यों न बनाया, किसी तरह उससे छुटकारा पाने के लिए बाप अपना अखबार पढ़ रहा है और ये उसका ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जिनका कोई उत्तर भी नहीं हो सकता। बचने के लिए बाप ने कहा कि इसलिए बेटा कि ऊपर से भूत प्रेत नीचे उतरकर बच्चों को तंग न करे। अगर छप्पर होता तो भूत प्रेत नीचे उतर आते, उसने इतना बड़ा आकाश बना दिया कि उतरते उतरते भी उनको सदियां लग जाएंगी, कहां उतरेंगे, उतर ही नहीं सकते, अनंत काल लग जाएगा। इसलिए अब मुझे पढ़ने दो। बेटे ने कहा एक सवाल और, तो फिर मास्टर जी कहां से आए। जब भूत प्रेत उतर ही नहीं सकते तो मास्टर जी कहां से आए, ये बात मुझे जस्ती। क्योंकि मास्टर जी का कुल धंधा इतना है कि भूत प्रेत के संबंध में पढ़ाना, जो बीत गया वो भूत, जो नहीं है वो प्रेत। अब औरंगजेब क्या है, भूत प्रेत। मगर हम बच्चों की प्रतिभा नहीं देख पाते, हम उनके प्रश्नों से बेचैन जरूर होते, और बेचैनी का कुल कारण इतना होता है कि उनके प्रश्नों के अगर हम उत्तर दें तो हमें अपनी मूर्ता दिखाई पड़नी शुरू होती, हम उन्हें टालते, हम अपने प्रश्नों से जबरदस्ती उनका मुंह बंद कर देना चाहते, और हमारे हाथ में ताकत जरूर है कि हम उनके मुंह बंद कर सकते। एक बार एक मास्टर ने लड़कों से कहा कि कोई महत्वपूर्ण लड़ाई बताओ। एक लड़के ने कहा मेरे डैडी ने कहा घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। पति गुस्से में था, उसने पत्नी से कहा मैं सारे घर में आग लगा दूंगा। बच्चा हंसते हुए बोला आपको चूल्हे में तो आग लगानी आती नहीं, इसी पर तो मां नाराज हो रही, और आप सारे घर में आग कैसे लगा देंगे, जरा मैं भी सुनूं। बच्चे चीजें सीधी देखते, साफ देखते कि चूल्हा जलता नहीं इनसे, और घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं। चूल्हे जल जाता तो झगड़े क्यों खड़ा होता, मां इसलिए तो नाराज हो रही कि चूल्हा नहीं जला पाए। एक बच्चा दूसरे से, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते, दूसरा लोगों में सुख दुख बांटते। पहला है क्या वे भगवान है, दूसरा नहीं पोस्टमैन। एक अध्यापक ने पूछा घटना व दुर्घटना में फर्क समझाओ। बच्चे ने कहा अगर विद्यालय में आग लग जाए तो वह घटना होगी और अगर आप आग में बच जाए तो वह दुर्घटना होगी। छोटा लड़का पहले दिन स्कूल गया, वहां से लौट कर आया तो माँ ने पूछा कैसा लगा स्कूल, कैसा लगा बेटा? ठीक था, लेकिन मम्मी हमारे मास्टर जी बड़े मूर्ख, उन्हें कुछ नहीं आता, हर बात बच्चों से पूछते। छोटे बच्चों को अगर तुम गौर से निरीक्षण करो तो तुम उनमें एक स्पष्ट प्रतिभा पाओगे, एक सूझबूझ पाओगे, एक मौलिकता पाओगे। लेकिन हम इस मौलिकता को मार डालते, हम इस मौलिकता को सहारा नहीं देते, हम इसको पोषण नहीं देते, हम इसकी हत्या कर देते। अगर इस मौलिकता को पोषण मिले तो ये दुनिया में इतना सौंदर्य हो सकता है, इतने अद्भुत व्यक्ति हो सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के फूल अलग अलग होंगे। मगर हम सबको तोड़ मरोड़ के यंत्रवत एक जैसा बना देते। हमारी पूरी फिक्र इस बात की है कि किस तरह हम सबको एक सांचे में बिठा दें, एक सांचे में डाल दें। हमारे स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय अभी विद्यापीठ कहलाने योग्य नहीं, अभी तो वे फैक्ट्रियां हैं जहां हम आदमियों को मशीनों में डालते। अभी वहां हम चेतना को जन्म नहीं देते, अभी हम चेतना की हत्या करते हैं वहां, अभी वहां हम जहर निर्मित करते। मगर जहर को हमने इतने अच्छे नाम दे रखे कि हमें भी पता नहीं चलता, औरों को भी पता नहीं चलता कि ये जहर है। जब तुम बच्चों को कहते हो कि प्रथम आना, तो तुम उन्हें महत्वाकांक्षा सिखा रहे हो, तुम उन्हें युद्ध सिखा रहे हो, तुम उन्हें अहंकार सिखा रहे हो। एक तरफ तुम उनसे कहते हो कि प्रथम आना, और दूसरी तरफ तुम उनसे कहते हो कि विनम्रता सीखो। तुम विरोधाभास भी नहीं देखते। एक तरफ कहते हो अहंकार बुरी चीज है, और दूसरी तरफ कहते हो कि महत्वाकांक्षा अगर नहीं होगी तो जीवन में विकास कैसे करोगे। मेरी ये बात स्कूल के दिनों से ही कभी समझ में नहीं आई। मेरे एक शिक्षक ईसाई थे और धार्मिक ईसाई थे, नियम से चर्च जाते थे। मेरे गांव में ज्यादा ईसाई नहीं थे और एक ही चर्च था और 4-6 ईसाई परिवार थे। उनसे मैंने पूछा क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जीसस ने कहा है धन्य है वे जो अंतिम होंगे, लेकिन कक्षा में आप ये व्यवहार नहीं करते, आप कैसे ईसाई? जो अंतिम बैठे हैं वे धन्य हैं या जो प्रथम पंक्ति में बैठे वे धन्य? उन्होंने मुझसे कहा कि देखो उई जरूर बातें नहीं पूछा कर। इस बात को मैं भूल ही नहीं सकता कि यह आदमी जो बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, ये इस बात को उल जलूल कहता है। मैंने कहा अगर ये बात उल जलूल है तो बाइबल में आग लगा दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कहां बैठूं। आप साफ साफ कर दो। यूं मैं पीछे बैठना पसंद करता हूं क्योंकि पीछे बैठने के कई फायदे। उन्होंने तुम्हारा मतलब? मैंने कहा पीछे बैठ के ताश खेलो, उपन्यास पढ़ो, कंकर पत्थर फेंको, लोगों के कपड़े खींचो। मैं तो जीसस की बात का मतलब बिल्कुल ठीक समझ गया कि धन्य है वो जो अंतिम है, मगर मुझे आप आगे बैठने को कहते हो, कहते इसीलिए तुम आगे बैठने को कहते कि तुम बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि वो वचन जीसस का क्या होगा। फिर वो बोले उलझन बात न करो, सारी शिक्षा आदर किसको देती, जो प्रथम आ जाए उसको आदर, उसको सम्मान, उसको प्रतिष्ठा, उसको गोल्ड मेडल। और आश्चर्य की बात तो ये है, अब जैसे अभी कलकत्ता की मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिली, तो मदर टेरेसा भी इंकार न कर सकी नोबेल प्राइज लेने से। ऐसे निष्णात ईसाई होकर भी ये पुरस्कार लेने से इंकार नहीं कर सकी, और ये पुरस्कार लेने के बाद जगह जगह सम्मान शुरू हो गए। तब से साल भर बीत चुका है, सम्मान चल रहे हैं, सेवा वगैरह तो भूल ही गई। अब सेवा वगैरह की फुर्सत कहाँ है? आज लखनऊ में सम्मान है, कल कलकत्ते में सम्मान है, परसों मद्रास में सम्मान है, फिर दिल्ली में सम्मान है, फिर हिंदुस्तान के बाहर जगह जगह सम्मान हो रहे हैं। अब सेवा वगैरह का तो सवाल ही कहाँ है? वो नोबेल प्राइज क्या मिली? अब सारे विश्वविद्यालयों को डीलिट देना है और सारे लोगों को सम्मान बांटने हैं और भारत रत्न की उपाधि देनी है। अब तो सम्मान ही सम्मान लेने में समय गुजरना है। और जीसस कहते हैं धन्य है वे जो अंतिम। अगर ईसाई होती ये महिला, इसे कहना था कि हमें नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, इससे तो जापान सात्र कहीं ज्यादा ईमानदारी का काम किया। जब उसे नोबेल प्राइज मिली, वो हालांकि ईसाई नहीं था, नास्तिक था, मगर इसलिए तो तुमसे कहता हूं कि अक्सर नास्तिक आस्तिकों से ज्यादा ईमानदार होते। तुम्हारे तथाकथित आस्तिक बिल्कुल बेईमान होते। उनकी सबसे बड़ी बेईमानी तो ये होती कि वो नास्तिकता से आग से गुजरे ही नहीं और आस्तिक हो गए। उन्होंने नहीं कहने की कभी क्षमता ही नहीं जुटाई और उन्होंने हाँ कह दिया। उनकी हाँ लचर पचर तो होगी, उनकी हाँ में कोई जान तो हो नहीं सकती। ज्यांपाल सार्त्र को जब नोबेल प्राइज मिली तो उसने इंकार कर दिया, सधन्यवाद नोबेल प्राइज वापस लौटा दी। और उत्तर में जो उसने बात कही वो बिल्कुल ठीक कही। उसने कहा कि मैं नहीं मानता हूं जो स्थापित समाज है उसके किसी मूल्य में मेरा भरोसा नहीं, इसलिए इस स्थापित समाज के द्वारा किसी तरह का सम्मान स्वीकार करना समझौता होगा। मैं एक नया समाज चाहता हूं, मैं इस समाज का दुश्मन हूं, इसलिए इस समाज से किसी तरह का सम्मान लेना रुष्वत लेना होगा। इस समाज से सम्मान लेना फिर इसका विरोध करना, दोनों में संगति नहीं होगी, इसलिए क्षमा कर मैं ये पुरस्कार नहीं ले सकता हूं। ये पुरस्कार आप उन चापलूसों को दें जो स्थापित न्यस्त स्वार्थों के हित में। इतनी भी हिम्मत मदर टेरेसा न कर सकी, और ये जीसस की अनुयायी गले में क्रास टंगा हुआ है, मगर इस क्रास का कोई मूल्य नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। प्रथम होने की दौड़ में अगर मौका मिल जाए तो कौन पीछे होना चाहेगा? ये मदर टेरेसा मर्द के भी अगर साथ ले जा सके नोबेल पुरस्कार का तगमा, तो लेके पहुंचेगी स्वर्ग, परमात्मा को दिखाएगी कि मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं, देखो नोबेल पुरस्कार का तगमा लेके आई किसी और ईसाई सेवक को नहीं मिला, सिर्फ मुझको मिला। मैं सब सेवकों में प्रथम, किसी पोप को भी नहीं मिली नोबेल प्राइज, मुझे मिली। मुझे स्थान विशेष मिलना चाहिए अब स्वर्ग में। मुझे ज्ञापाल सात्र की बात में अर्थ मालूम पड़ता है, संगति मालूम पड़ती है, ईमानदारी मालूम पड़ती है। यद्यपि वो नास्तिक है, ना वो ईश्वर में मानता है, ना वो मानता है कि जीवन का कोई अर्थ है, ना वो मानता है कि कोई आत्मा है जो बचेगी, मगर फिर भी उसकी हिम्मत, उसका साहस, उसका बल, एक बात उसको साफ दिखाई पड़ती कि जिस समाज के सारे मूल्यों का मैं विरोध करता हूं, उस समाज से कोई सम्मान में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। जैसे मुझे कोई भारत रत्न की उपाधि दे तो मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं, असंभव, क्योंकि मैं देशों के विरोध में हूं। मैं किसी देश का रत्न नहीं हो सकता, कंकड़ पत्थर होना ठीक, मैं किसी देश का रत्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो फिर राष्ट्रीयता में मान लेना हो जाएगा, वो तो राष्ट्रीयता को स्वीकार कर लेना हो जाएगा। मैं तो मानता नहीं कि पृथ्वी को विभाजित होना चाहिए, मैं तो मानता नहीं कि पासपोर्ट होने चाहिए, मैं तो मानता नहीं कि लोगों को एक दूसरे देश में जाने में कोई बाधा होनी चाहिए। प्रत्येक देश का विधान कहता है आवागमन की स्वतंत्रता, मगर कोई स्वतंत्रता वगैरह क्या खाक, क्या आवागमन की स्वतंत्रता है? अपने ही देश में आवागमन की स्वतंत्रता नहीं होती। आसाम में जो भारतीय रह रहा है वो भी विदेशी, भारत के ही लोग, मगर वो भी विदेशी, क्योंकि खास तारीख के बाद वो वहां पहुंचे, उसके पहले पहुंचते तो देसी होते, उसके बाद पहुंचे तो विदेशी। मुझे कोई नोबेल प्राइज दे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सच तो यह है कि जिस व्यक्ति ने नोबेल प्राइज स्थापित की तुम्हें पता है वो कौन था? जिस आदमी ने नोबेल प्राइज शुरू की वह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्रों का उत्पादक था, नोबेल। पहला महायुद्ध उसके ही अस्त्र शस्त्रों से लड़ा गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा बमों का बनाने वाला आदमी था। ये सारा धन जो नोबेल प्राइज में मिल रहा है लोगों को, उसने बमों और हत्याओं और युद्धों से कमाया था। फिर उसे पश्चाताप होने लगा बुढ़ापे में कि मैंने क्या किया। उसे अपने हाथ खून से रंगे हुए मालूम पड़े। उसे दिखाई पड़ा कि मैंने जीवन भर जो किया वो पाप है, नियत निश्चित रूप से पाप है। मेरा सारा धन खून से निचड़ा हुआ है, लाखों लोग मेरे कारण मरे और कटे, अब मैं क्या करूं? वो मरते वक्त घबराया होगा कब से आज जवाब देना पड़ेगा, परमात्मा के आमने सामने मैं कैसे करूंगा? तो प्रायश्चित करने के लिए उसने नोबेल प्राइज शुरू की, सारी संपत्ति को उसने ट्रस्ट बनाया और निश्चित ही उसने काफी संपत्ति इकट्ठी की होगी। प्रत्येक वर्ष हर विषय में नोबेल प्राइज दी जाती और एक एक नोबेल प्राइज करीब 18 लाख रुपया एक एक नोबेल प्राइज के साथ मिलता है। और इसने इंतजाम ऐसा किया है कि सदा चलता रहेगा, ये सिर्फ ब्याज से चल रहा है। ये करोड़ों रुपए जो प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं सिर्फ ब्याज है उसकी संपत्ति का। उसने तो प्रायश्चित किया है, मगर किसी ईसाई में तो ये हिम्मत होनी चाहिए कि इस खून से भरे हुए पैसे को, इस लहू लुहान हाथ से दिए गए पैसे को लेने से इनकार कर दे। और ऐसा नहीं है कुछ कि प्रायश्चित करके नोबेल ने अपने कारखाने बंद कर दिए, कारखाने जारी रहे, यही तो मजा है तथाकथित धार्मिक लोगों का। गंगा भी नहा आते हैं, पाप से छुटकारा भी हो गया। जब पाप से छुटकारा हो गया तो फिर पाप करने के लिए छूट हो गई, अब फिर करो, फिर नहा लेना गंगा। कारखाने भी जारी रहे, बम भी बनते रहे, वो उसके बेटे संभाल रहे हैं, वो उसके बच्चे संभाल रहे हैं, और उसने जो कमाई की थी उसने उसका ट्रस्ट भी बना दिया, उससे पुरस्कार भी बढ़ते रहेंगे, शांति का पुरस्कार भी मिलता है, सेवा का पुरस्कार भी मिलता है, वैज्ञानिक शोधों के लिए पुरस्कार मिलता है, और मिलता है किसकी संपत्ति से? इस सदी के सबसे ज्यादा बड़े हत्यारे आदमी की संपत्ति से। उसने तो गंगा नहा ली, ठीक, मगर गंगा नहा लेने से भी कृत्यों में कोई भेद नहीं पड़ता, वही के वही कृत्य जारी रहते। मगर ईसाई में भी कहां इतनी हिम्मत होती, और उससे भी कहो तो वो भी कहेगा क्या बकवास लगा रखी। छोटे बच्चों में स्पष्ट रूपेण देखने की क्षमता होती, आर पार देख सकते, एक छोटा बच्चा जस से घर आया, उसकी मां ने पूछा आज पादरी ने क्या पढ़ाया, उस बच्चे ने कहा आज पादरी ने बताया मोसेस के संबंध, कि जब मोसेस इजिप्ट से अपने अनुयायियों को लेकर आया और बीच में समुद्र पड़ा, तो उसने अपने सारे इंजीनियर लगा दिए, बड़ी बड़ी दीवारें उठाई इंजीनियरों ने, समुद्र को दो हिस्सों में काट दिया, दुश्मन पीछा कर रहा है और उसकी सेनाएं और उसके मित्र सब उन दीवारों को पार करके, उन दीवारों के बीच से गुजर के समुद्र को पार कर गए, और जैसे ही वो इस पार हुए और दुश्मन की सेनाएं पीछे आई कि दीवारें एकदम गिर गई, इस ढंग से दीवारें बनाई गई थी कि इंजीनियरों ने बटन दबाया कि दीवारें गिर गई, समुद्र अपनी जगह हो गया, दुश्मन उस पार और मूसा और उसके अनुयायी इस पार। माँ ने कहा कि सच में तेरे पादरी ने ये कहानी तुझे सुनाई? उसने कहा मम्मी अब तुमसे क्या कहना, जिस ढंग से उसने सुनाई अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम मानोगे ही नहीं, इसलिए मैं उसको वैज्ञानिक बनाकर सुना रहा हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आ सके और तुम मान सको। उसने तो बिल्कुल उलझुल गप मार रहा था, वो तो कह रहा था कि मोसेस आए, न इंजीनियर न स्थापत्य के जानकार, न कोई न कोई, एकदम चमत्कार हुआ, परमात्मा ने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिए, ये कहीं हो सकता है? और वो निकल गए बीच में से, समुद्र खुद खड़ा रहा कटा हुआ, और जब वो निकल गए तो परमात्मा ने दूसरा चमत्कार किया, समुद्र को वापस जोड़ दिया। उसने तो ऐसी झूठ कहानी सुनाई थी, मगर ये तो मैं तुमको ढंग से सुना रहा हूं। बच्चे देख लेते हैं कि कहां की बात झूठ हो रही, कहां तक बात सच हो रही। छोटे बच्चों से कहो कि जीसस का जन्म हुआ था कुंवारी कन्या से, वो भी चकित होकर सुनते हैं ये बात। बच्चे भली भांति जानते हैं लेकिन हम बच्चों की आंखों में धूल झोंक के चले जाते, हम कुछ भी उनको समझाते चले जाते और सोचते हम धूल झोंकने में समर्थ हो रहे। बच्चे हंसते मगर जल्दी वो भी हमारी बेईमानी के शिकार हो जाते, उन्हें भी अपनी प्रतिभा खोनी पड़ती। मेरे गांव में मेरे पिता के एक मित्र थे पंडित भागीरथ प्रसाद द्विवेदी, वो गांव के बड़े प्रतिष्ठित वैद्य थे, और वैद्य से भी ज्यादा उनका घर ब्रह्मज्ञानियों का अड्डा था। वहां सत्संग चलता ही रहता था, कभी कोई महात्मा आए, कभी कोई महात्मा आए, कभी करपात्री जी ठहरे हुए हैं, कभी शंकराचार्य आए हुए हैं, कभी कोई और बाबा आए हुए हैं। मतलब ये शायद ही कभी ऐसा होता हो उनका घर खाली हो और वहां सत्संग जारी रहता है। मैं भी वहां पहुंच जाता, मुझे देख के वो मुझे पास बुलाते हो, कहते देखो बिल्कुल चुपचाप बैठना, कुछ प्रश्न वगैरह नहीं करना, बड़े जब हो जाओगे तब सब समझ में अपने आप आ जाए, अभी प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं। मगर मुझसे रहा नहीं जाता जब मैं बेवकूफी की बातें सुनता। तुम उससे रहा ना जाता, हालांकि वो मुझको गुर्राते, आंखें दिखलाते, मगर फिर मैं उनकी तरफ देखते ही नहीं। फिर तो महात्मा से मुझे जो कहना होता कह लेता। धीरे धीरे उनके घर आने वाले सारे महात्मा, करीब करीब भारत के सारे महात्मा, महात्माओं से मेरा परिचय बचपन से उन्हीं के घर हुआ, वो भी मुझे जानने लगे। उनसे कहते कि देखो ये छोकरा नहीं आना चाहिए, ये आया कि ये कुछ ऐसी बात पूछेगा ही कि जिसमें झंझट खड़ी होती है और दूसरे लोगों पर भी प्रभाव कम होता है, इसको डांटो डपटो तो ये मानता भी नहीं, डांटने डपटने से ये और उल्टा तेजी में आ जाता है। अगर इस पर गुस्सा हो जाओ तो ये कहता है कि ये कैसा महात्मापन है कि बस जरा से मैं गुस्सा आ गया और अभी समझा रहे थे अक्रोध और भूल ही गए और खुद ही क्रोध में आ गए, और अभी कह रहे थे कि मनुष्य को जल में कमलवत रहना चाहिए और अब क्या हुआ, जरा चाबी घुमाई कि भूल ही गए कि जल में कमलवत रहना, एकदम डुबकी मार गए जल में। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, तो मेरे पिता को खबर भेज देते थे कि महात्मा आए हैं आज हमारे घर में, तुम्हारे बेटे को पता ना चले। मगर मैं उनके घर के सामने से दिन में दो दफे निकलते ही था, और उनकी पत्नी महात्माओं के खिलाफ थी स्वभावतः, क्योंकि उसको उनकी सेवा करते करते थक मरी थी वो, और एक से एक मूढ़ों की सेवा उसको करते करते, तो अगर मुझे पता भी नहीं चले उनकी पत्नी खबर भिजवा दे कि बेटा तू आ जाना, लगा दे इसको ठिकाने, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो पति देव के पीछे। उनकी पत्नी महात्माओं से भी ज्यादा मेरी सेवा करती थी, माल कुए खिलाती, ये करती थी, बिल्कुल ठिकाने लगा दे इस महात्मा का, ऐसा ठिकाने लगाओ कि कभी आए नहीं वापस। तो मैं भी उनसे कहता कि मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं था, संदेश आपके घर से ही मिला है। वो कहते भेजा होगा मेरी पत्नी ने, मैं जानता हूं उसको, वो तेरे पक्ष में, वो क्यों तेरे पक्ष में वो भी मैं जानता हूं, वो मुझसे बदला ले रही तेरे द्वारा। मैंने कहा तुम अपने महात्माओं को क्यों नहीं कहते कि जवाब क्यों नहीं देते, सत्संग का मतलब ही ये है कि जवाब दे दो, और मैं कोई कठिन सवाल नहीं पूछता, सीधे साधे सवाल पूछता हूं। अब एक महात्मा समझा रहे थे कि रामचंद्र जी सोने के हिरण के पीछे भागे और तभी रावण आया और सीता को चुरा ले गया। मैंने कहा ठहरो, तुमने रामचंद्र जी को इतना बुद्धू समझा, उनको भी इतनी अकल नहीं? गधे से गधे आदमी को ये अकल होती है। अगर मुझे भी, मैंने वर्तमान हूं समझो, मुझे भी अगर सोने का हिरण दिखाई पड़े तो मैं मानूंगा नहीं कि सच्चाई हो सकती। हिरण कहीं सोने के होते? तुम अपने ही कहो, अगर तुम्हें कहीं रास्ते पे हिरण दिखाई पड़ जाए और सोने का, तो तुम उसके पीछे जाओगे? नहीं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो मैं अगर तुम सोचते हो रामचंद्र जी तुमसे भी ज्यादा गए बीते थे, सोने के हिरण के पीछे चले गए, सोने के कहीं हिरण होते? इतनी अकल तो उनमें होनी चाहिए। अरे जो कहते हैं कि सारा जगत मृग मरीच का है, वो मृग की ही मरीचिका में आ गए, हद हो गई। जवाब नहीं है तो बेचैनी खड़ी होती, पसीना छूट जाता, गुस्से में आ जाते। मेरा अपना अनुभव यही है कि छोटे बच्चों को अगर मौका मिले, उन्हें हम मौका ही नहीं देते, हम उन्हें डांट टपट के रखते, अवसर ही नहीं देते। नहीं तो तुम पाओगे कि उनके पास से ताजगी और उनके पास से मौलिक सूझबूझ दृष्टि, और हम अगर उनको सहारा दें तो हम उनकी दृष्टि को निखार सकते, उसे बलवान बना सकते। छोटे बच्चों के पास जो क्षमता है, अब तक हमारी सारी चेष्टाओं से नष्ट करने में लगी रही, इसलिए मनुष्य जाति इतनी मूढ़ अन्यथा बुद्धों से भरी होती, और बुद्धों से भर सकती है पृथ्वी, मगर हमें काम बच्चों से ही शुरू करना पड़ेगा। और जब तक हम बच्चों की प्रतिभा को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम मनुष्य को बदलने में समर्थ नहीं हो सकते।
आज के एपिसोड में हमने म्यूजिक मिलारेपा देशा देवा प्रेमल और आनंद रिचा की एल्बम से सुना। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
मैं देख सकूं सब में तुमको, मैं देख सकूं सब में तुमको, दृष्टि मुझे प्रभु दे प्रेम। प्रभु दे देना वह दृष्टि मुझे।